শ্রীমদ্ ভাগবতম স্কন্দ চার অধ্যায় ৩০ প্রসেতাও কে কার্যকলাপ আজকা শ্লোক সংখ্যা ৩০ চার ৩০ ৩০ অসৌব বরম অস্মাকম ইপ্সিতঃ জগতপতে প্রসন্ন ভগবান জেষাম অপবর্গ গুরুঃ গতি অসৌব বর অস্মাকম ইপ্সিত জগতঃ পতে প্রসন্ন ভগবান জেষাম অপবর্গ গুরুঃ গতি অসৌব বর অস্মাকম ইপ্সিত জগতঃ পতে প্রসন্ন ভগবান জেষাম অপবর্গ গুরু গতি ইপ্সিত জগতপতে প্রসন্ন ভগবান জেষাম মাতাজি শব্দার অসৌ উস এব নিশ্চয়ই বর বর অস্মাকম আমারা ইপ্সিত ইচ্ছিত জগতঃ ব্রহ্মাণ্ডকে পতে হে স্বামী প্রসন্ন প্রসন্ন ভগবান ভগবান জেষাম জিষ্কে সাত অপবর্গ দিব্য প্রেমা ভক্তি কা গুরু শিক্ষক গতি জীবন কা চরম লক্ষ্য অনুবাদ ও তাৎপর্য শিলপ্রপাত দ্বারা শিলপ্রপাত কি অনুবাদ হে জগৎকে স্বামী আপ ভক্তি যোগ কে বাস্তবিক শিক্ষক হ্যায় হমে সন্তোষ হয় কি হমারে জীবনকে চরম লক্ষ্য আপ হ্যায় আর হাম প্রার্থনা করতে হয় কি আপ হাম পর প্রসন্ন হো এই হমার অভিষ্ট বর হ্যায় হাম আপকি পূর্ণ প্রসন্নতাকে অতিরিক্ত আর কুছ ভি কামনা নহি করতে কৃপায় ধরিয়ে হে জগৎকে স্বামী আপ ভক্তি যোগ কে বাস্তবিক শিক্ষক হ্যায় হামে সন্তোষ হয় কি হামারে জীবনকে परम लक्ष्य आप है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो, यही हमारा अभिष्ट वर है। हम आपके पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते। तत्पर्श इस श्लोक के अपवर्ग गुरु गति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 1:2:11 परमेश्वर ही परम सत्व का चरम तत्व है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दोते। परम सत्व तीन प्रकार से अनुभव किया जाता है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्जामी परमात्मा तथा पुरुषोत्तम भगवान। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष है, पावर्ग का अर्थ भौतिक संसार है। एक संसार में मनुष्य सदैव कठोर परिश्रम करता है किंतु अंत में निराश हो जाता है, तब उसकी मृत्यु हो जाती है और पुनः कठोर परिश्रम करने के लिए उसे अन्य शरीर प्राप्त होता है। भौतिक संसार का यही चक्र है। अपवर्ग उसका विपरीत है, इसमें मनुष्य कुत्ता, कुत्ते, बिल्लियाँ की तरह कठोर परिश्रम न करके भगवान के धाम को वापस जाता है। मोक्ष का प्रारंभ परमेश्वर के ब्रह्म तेज में मिल जाने से होता है, यह ज्ञानी संप्रदाय वालों का विचार है, किंतु भगवत साक्षात्कार इससे बड़ी चीज है। जब भक्त समझता है कि भगवान प्रसन्न है तो मोक्ष अर्थात ब्रह्म तेज में मिलना कठिन नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंच जाता है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंचा जाता है, उसी तरह मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म तेज के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना होता है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाना कठिन नहीं रह जाता। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयति गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो सुबह की भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रारंभ में मैत्रेय ऋषि ने क्या करते हैं कि प्रसेता के पुत्रों की जो कार्यकलाप है उसका विशेष रूप से वर्णन किया था, और बाद में उस पुत्र लोग पुत्र जाकर एक विशाल समुद्र की भांति एक सरोवर के किनार में जाकर शिवजी से मिले और शिवजी से मिलने के बाद उन्हें सिद्धि प्राप्त हुआ। एक रुद्र गीत प्राप्त किया, उसका द्वारा तपस्या करके उन्हें सिद्धि प्राप्त हुआ। आज का यह पर हम इस अध्याय में बताते हैं, विदुर फिर से प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि को कि मिलने के बाद जो रुद्र गीत प्राप्त करके वो क्या प्राप्त किया था, जो तपस्या करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया था वो सिद्धि क्या है। देखिए, मनुष्य नाम सहस्रेषु क्वचित जतते सिद्धाय, ऐसा सिद्धि प्राप्त करने वाला मनुष्य बहुत कम है। पहले तो इच्छा करने वाला मनुष्य की संख्या कम है, हजारों हजारों मनुष्य हैं, उसमें से बहुत ही कम संख्या है मनुष्य जो आत्मतत्व ज्ञान की मार्ग को अपनाते हैं। सब लोग इस संसार में दुखी है और सब अपना शरीर और शरीर से जो सुख प्राप्त होना है उसके लिए रोज परिश्रम करते और रोज कितना हजारों क्वेश्चन पूछते, इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है, ये कहाँ जाना है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये क्वेश्चन जब कोई पूछता है तो सिद्धि की मार्ग में वो अग्रसर हो जाता है। जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान को जब प्राप्त करके वो आगे बढ़ता है और भगवान की भक्ति करते करते तपस्या करते करते उसको वो सिद्धि प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछते हैं, वो जो सिद्धि है, जो सफलता प्राप्त किया है, वो सफलता का जो चरम, जो परम पावा, वो यहाँ पर चार पांच श्लोक में, इसी श्लोक से शुरुआत होता है और यहाँ से पांच सात श्लोक में वो सफलता को, वो सिद्धि को यहाँ पर प्रकाश करते हैं मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को। तो आज का श्लोक में हम देखते हैं कि हे, पहले तो दर्शन प्राप्त किया, दर्शन प्राप्त करके वो वरदान मांग रहा है, वो वरदान यहाँ से चार पांच श्लोक में वो वरदान ही मांग रहा है सिर्फ। लेकिन हम देखिए, हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाए तो हम क्या वरदान मांगेंगे, क्या वरदान मांगना चाहिए, तो ये यहाँ से सीखना है क्या वरदान मांगना चाहिए। एक बार इंटरनेट के थ्रू एक बहुत सुंदर स्टोरी मिला था कि एक बार कोई वृंदावन घूमते घूमते वृंदावन में एक डिजायर ट्री का सामने वो सो गया, मतलब पहुंच गया डिजायर ट्री का सामने में। फिर वो प्रार्थना कर रहा है, अगर यहाँ पर एक सुंदर पालंक हो जाए तो हम अच्छा से सो सकते हैं। और तुरंत डिजायर ट्री तुरंत उनको एक सुंदर पालंक को दे दिया, और पालंक को दे दिया, वो जंगल के अंदर सुंदर पालंकों में सो रहा है। अभी सोते सोते उन्होंने इच्छा किया अभी खाना मिल जाए अच्छा, तो खा के अच्छा से हाथ ताथ धो के सो जाता हूँ, तो खाना भी मिल गया और वो अच्छा से अभी सोने जा रहा है। और सोने जा रहा है उस टाइम उन्होंने डर आया मन में, सोचा अगर यह जंगल है कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए तो, अतुरंत एक शेर प्रकट हो गया और उसको खा गया। तो ये है जे हम भगवान को प्राप्त करने के बाद वृंदावन धाम में भक्ति को प्राप्त करने के बाद हम क्या इच्छा करते हैं, क्या प्राप्त करने का इच्छा करते हैं और क्या प्राप्त करने का इच्छा करना चाहिए, वो इस श्लोक में हमें अच्छे से सीख प्राप्त होता है। और सर्वोच्च प्राप्ति क्या है भक्ति जीवन में, वो इस श्लोक में है, मतलब इससे यहाँ से चार पांच श्लोक में। अब यहाँ से जो चार पांच श्लोक की जो क्लास है वो आप मिस मत कीजिएगा। तो देखिए, आज का श्लोक में अपवर्गत हो, यहाँ पर अपवर्ग आता है, जो अपवर्गत जो कैबल्याद आपी गुरुर महोति आ गति फल तद्रूप जीव गोस्वामी बताते हैं। जो अपवर्गत, अपवर्ग कहाँ से शुरू होता है? अपवर्ग दो प्रकार के वर्ग है, एक पवर्ग एक अपवर्ग। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो कृष्ण भावनामृत है जो पवर्ग को न्यूलिफाई कर देता है। अभी हमें पहले जानना है ये पवर्ग क्या है, अपवर्ग वर्धनम। हम अपवर्ग के बारे में बहुत सुनते हैं क्लास में, और ये देवहूति के देवहूति को भी उपदेश देते हैं कपिल मुनि। निशम्म पुंसाय अपवर्ग वर्धनम, निशम्म पुंसाय अपवर्ग वर्धनम। ये अपवर्ग पांच प्रकार के वर्ग है संस्कृत में, आपके हिंदी में भी है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस प्रकार। तो एक आता है प वर्ग, तो प वर्ग में आता है प प ब भ म। तो ये प वर्ग चाहते हैं ना अपवर्ग चाहते हैं? प वर्ग में क्या है, बहुत परिश्रम करना है, इतना परिश्रम करना है कि अल्टीमेटली वो फेन आ जाए। हम हॉर्सेस को देखते हैं, गाधा को देखते हैं और बैल को भी देखते हैं कि माल गाड़ी ढूंढते 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 इतना परिश्रम हो जाता है कि धूप में हपाते हपाते उसका मुंह से फेन आ जाता है। ये संसार का ये धर्म है, ताई वो जो भी हो परिश्रम उनको करना ही पड़ेगा, और इतना परिश्रम करना पड़ेगा जीने के लिए कि उसका फेन आ जाए। ताई वो ब्रह्मा क्यों ना हो परिश्रम करना पड़ता है, सबको परिश्रम करना पड़ता है। ये संसार का नियम है, मनोषष्टि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। इस प्रकार सेटअप कर दिया, मशीन यंत्र सेटअप कर दिया कि उनको स्ट्रगल करना पड़ना करना ही है अपने अस्तित्व को रक्षा करने के लिए। तो फेन प फ ब, ब में क्या है, व्यर्थता, विफल हो जाना, परिश्रम सब विफल हो जाता है क्योंकि वो कोई काम का नहीं आता है। देखिए बड़ा बड़ा बिजनेस है, प्रोफेसर जी बताते बड़ा बड़ा बिजनेस है और इतना भाग दौड़ करता है, इतना भाग दौड़ करता है कि वो सूखा ब्रेड और थोड़ा सा चाय पी के वो दिन कटा देते हैं। और इतना बड़ा बड़ा बांग्लो, देखिए इधर वृंदावन में भी कितना सारे बांग्लो बनाते हैं, लेकिन वो भोग नहीं कर पाते, व्यर्थ तो है। हो सकता है उनका नौकर चाकर जो है वो उससे ज़्यादा खाते रोटी, हो सकता उनको डायबिटीज है, कुछ खा नहीं पाते और ये नौकर चाकर ये रहते अच्छा से खाना पीना करते और उसी फ्लैट में रहते और वो फ्लैट में रह नहीं पाता है, वो व्यर्थ तो है उनके लिए, वो भोग भी नहीं कर पाते तो व्यर्थ है। भय हमेशा भय रहता है, भीति हमेशा भय रहता है, कोई हमारा बैंक बैलेंस ना खत्म हो जाए, वहाँ से जैसा डिमोनाइजेशन हुआ, हम नोट बैन हो गया तो कितना सारे डर पैदा हो गया जो हमारा ये नोट क्या होगा, सब लाइन लगाने लगे बैंक में पैसा जमा करने, अपना अपना पैसा बचाने के लिए, उधर बैंक से भी चोरी हो रहा है, तो सबका अंदर भय है। पदम पदम जद विपदम, ये संसार में हर पद पद में विपद है। अभी गाड़ी में जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाए कि नहीं जाए तो क्या क्या हम देखते भी है, एक्सीडेंट कितना क्या क्या होता है संसार में, भय ही भय है। अभी विश्वयुद्ध तीसरा विश्वयुद्ध ना आ जाए भय ही भय है संसार में, पदम पदम हर पद में एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। ये भौतिक संसार की ये सच्चाई है, भय है और अल्टीमेटली मृत्यु है। तो पाप से परिश्रम से मृत्यु, ये पावर्ग है, तो पावर्गों को न्यूलिफाई करना है और इसका अपवर्गों में जाना है। और अपवर्गों की जो विज्ञान है অপবর্গ বর্ধনম এ কৃষ্ণ ভক্তি হয় উস পবর্গ কো নিউলিফাই করনা হয় আর প্রভাজি বাতাতে হর কৃষ্ণ ভক্ত কো হর পিতা মাতা কো ইয়ে ধর্ম হয় কি উনকো বাচ্চা কো এইসা বিজ্ঞান কি শিক্ষা দে কি ইয়ে পবর্গ মে কবি না যায় পবর্গ মে না ফাঁসে ইয়ে হর পিতা মাতা কে কর্তব্য হয় ধর্ম হয় তো পবর্গ মে আপ দেখিয়ে এ সংসার মে দু প্রকার কি কথা হয় প্রভাত জি বাতে দু প্রকার কি কথা এক হয় পবর্গ কি কথা আর এক হয় অপবর্গ কি কথা পবর্গ মে হয় গ্রাম্য কথা তো গ্রাম্য কথা চৈতন্য মহাপ্রভু বাতাতে গ্রাম্য কথা না শুনিবে ভালো না খাইবে ভালো না পড়িবে তো গ্রাম্য কথা শ্রবণ নেই কান্না আজ দেখি আমার ইন্ডিয়া মে এক এক নিউজ পেপার মে 10-12 পান্না আতা আর বিদেশ মে তো পুরা বাঁশ আ যাতা নিউজ পেপার কি প্রভাত জি বাতাতে যে এক এক দিন মে ইতনা বৃক্ষ কো নষ্ট করনা পড়তা হয় কি ইয়ে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ সব উসি কা হি নাতিজা হয় ইতনা গরমি হো রা হয় সমুদ্র কি যো জল স্তর হয় ও উপর আ রা হয় সুনামি হো রা হয় এ সবই এ গ্রাম্য কথা কি পরিণাম হ্যাঁ গ্রাম্য কথা ইতনা লোক রুচি রাখতে হয় উসমে যে ও গ্রাম্য কথাকে কারণ আজ আপনি আপকো আত্মহত্যা কি একদম সীমানা মে পৌঁছা দিয়া সংসার মে কবি ভি কুছ তবাহি মচ সকতা হয় ইস গ্রাম্য কথা কি রেজাল্ট কে কারণ প্রভাত জি আপনার শিষ্য কো দেখাতে হুয়ে বাতাতে হ্যাঁ কি দেখো ये लोग जो भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र जो भक्ति में आ गया ये सारे भक्त को देखा के प्रभात जी बताते जो ये भक्त जो भक्ति में आके ये और ग्राम्य कथा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते कितना न्यूज़पेपर बच जाता ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता ये लोग ये विरक्ति भौतिक संसार की जो ग्राम्य कथा उसमें विरक्ति आ गया इसमें इसका अंदर कोई यार आसक्ति नहीं है विरक्तिर अन्यत्र भक्ति में जो कोई आ जाता है परेश अनुभव जब आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान की अनुभव होता है तो वो विरक्ति आ जाता है इस ग्राम्य कथा में विरक्ति आ जाता है तो बताते नजत बासो सचित्र पदम हरेर जशो जगत पवित्र पवित्रम प्रगृणीत करहिचित নজদ বাসস চিত্রপদম হরের যশ প্রগৃণীত করিহিচিৎ বাসস্তিত্ব পদম এক হয় বাসস্তিত্ব যে কৌয়া কি তীর্থভূমি হায় এ গ্রাম্য কথা কিসকা তীর্থভূমি হায় কৌয়া দু প্রকার কি পক্ষী হায় এক হয় হংস এক হয় কৌয়া তো কৌয়া কৌয়া ক্যা করতা হয় ইংলিশ মে এক শব্দ আতা বার্ডস অফ দ্য সেম ফেদার ফক টুগেদার ও কৌয়া কৌয়া কে সাথ ঘুমতা হংস হংস কে সাথ ঘুমতা উসি প্রকার দু প্রকার কি মনুষ্য হয় এক কৌয়া কি ভাতি মনুষ্য আর এক হংস কি ভাতি মনুষ্য হংস পরমহংস হো যাতা তো হংস কে ভাতি মনুষ্য এ যো কৃষ্ণ ভাবনামিতা আন্দোলন ইসমে ক্যা হয় প্রভাতজি কে উদ্দেশ্য যে হংস সম্প্রদায় ক্রিয়েট করনা না কি কৌয়া সম্প্রদায় এক হংস সম্প্রদায় ক্রিয়েট করনে কা প্রভাতজিকে উদ্দেশ্য হয় যে বাসস্তিত্ব যে কৌয়া কি যেসা রুচি বোধ হয় উস প্রকার তিত্ব মে ও রুচি না করে না রাখে ভালেই ও চিত্র পদম বহুত সুন্দর রূপছে বর্ণন কেউ না হো ভৌতিক কাব্য ভৌতিক রচনা কিতনা ভি চিত্রপদম সে বর্ণন কেউ না হো চিত্রপদম কা মতলব হ্যায় যে বহুত ফিগারেটিভলি ও বর্ণন কিয়া হ্যায় লেকিন ফির ভি ভক্ত ক্যা করতা হ্যায় উসমে বিলকুল মানসা নেই রাখতা হ্যায় উসমে বিলকুল রুচি নেই রাখতা হ্যায় তো দু প্রকার কি সরোবর বাতাতে হ্যাঁ এক সরোবর মে এই হংস লোক রাতে হ্যাঁ যে মানস সরোবর হ্যায় আর ও কৌয়াকে যে সরোবর হ্যায় ও কাকতিত্ব হ্যায় वहां पर एक कौवा जैसा मनुष्य रहता है। तो हमें उस आध्यात्मिक जो हंस संप्रदाय में प्रवेश करना ही या फिर इस श्लोक में वहां पर अपवर्ग मार्ग में प्रवेश करके फिर उस भक्त की वही हंस की संग प्राप्त करना ही जीवन की चरम प्राप्ति है। या फिर ये सारे जो प्रसेता जो वरदान मांग रहा है, हे भगवान आप अनंत है, आप भी बाढ़ भी अनंत दे सकते हैं, आपके बाढ़ की भी सीमाना नहीं है, तो हम क्या मांग सकते आपसे। तो आगे श्लोक में इस प्रकार वरदान मांगते हैं कि हम आपके भक्त की संग प्राप्त करें। देखिए हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहे और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहे, तब तक हम उनकी संगति में रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा ही प्रार्थना किया है, जे कीट जन्म हो जोता तू आदास, ब्रह्म जन्मे नहीं आश। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, हे प्रभु हमें ब्रह्म जन्म की कोई आशा नहीं है, ब्रह्मा की पद प्राप्त हो, ब्रह्मा की शरीर प्राप्त हो, वैसा कोई आशा नहीं है। कीट जन्म जोथा तुआ दास, हमें मुक्ति का भी कोई इच्छा नहीं है, हमें सिर्फ आपके भक्त की संग प्राप्त हो, वहाँ पर एक कीड़ा बन जाए आपके भक्त के घर का, कीट जन्म हो जोथा तुआ दास। क्योंकि आपके भक्त के घर में अगर जन्म हुआ तो कम से कम भक्त की उच्छिष्ट तो मिलेगा, भक्त के दर्शन तो मिलेगा, उसी से हमारा मुक्ति निश्चित है। प्रहलाद महाराज भी ऐसा ही प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना देखिए, एक का बाद यहाँ पर प्रार्थना से भक्त संघ की महिमा बताते हैं आगे। श्रीमद् भागवतम जो हमारा भारत में है, देखिए हम भाग्यशाली है, भारत में भागवतम जैसे अमूल्य ग्रंथ है। विद्या भागवताब्दि, जो सारे ज्ञान की परिसमाप्ति वही है। निगम भागवतम निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम क्या है, सारे वेद उपनिषद वो है निगम, उस निगमों की जो कल्प तरु है उसका जो गलितम फल वो है श्रीमद् भागवतम। एक आम के वृक्ष में दो प्रकार के फल है, एक है पका हुआ फल, एक है कच्चा फल। तो पका हुआ फल को बताते हैं कि उसमें अगर पैरोट अगर उसको थोड़ा सा खा लिया पका हुआ फल को, तो वो टेस्ट डबल हो जाता है। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम सुख मुखात अमृत द्रव संयुत, हम सुख के द्वारा इसको टेस्ट किया गया, इसलिए ये अमृतमय है, रसमय है, कहीं से भी पान करो इसमें कोई बीज नहीं है, इसका अंदर गाट नहीं है, इसलिए रसमहम रसम आलयम। तो ये श्रीमद् भागवतम प्राप्त हम कर किया है, और ये भागवतम में जो सर्वोच्च ज्ञान की परिसमाप्ति है श्रीमद् भागवतम, इसलिए हमें वो क्या करना चाहिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया, इस भागवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। देखिए एक प्रकार के कुछ भक्त हैं वो बताते हैं जे प्रभुपाद ही एकमात्र लास्ट शुद्ध भक्त है, और कोई शुद्ध भक्त है नहीं, और किसी को भक्त ही नहीं मानते, वो एक प्रकार से तिलक कंठीमाला धारण करके एक प्रकार से डिमोनिया डिमोन बन जाते हैं, कोई भक्त की सम्मान उनके अंदर है नहीं, वो यही मानते हैं जो प्रभुपाद एकमात्र लास्ट शुद्ध भक्त है, संसार के और कोई भक्त ही नहीं है। इसलिए किसी को हरे कृष्ण बोलना व किसी का रेस्पेक्ट करना उसका दिल में है ही नहीं, वो हर किसी को एकदम नगण्य तुच्छ मानते हैं। इसलिए किसी का संग करने का भी इच्छा नहीं है, वो सोचते हैं कि प्रभुपाद जी का किताब में ही हमें सारे आइडियल क्वेश्चन आइडियल आंसर है, हमें वो ऐसे प्राप्त हो जाएगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी मतलब किसी के माध्यम से हम उसको ज्ञान ग्रहण कर सकते। तो पहले देखिए, अगर प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त है आप मानते हैं और वो शुद्ध भक्तों का इतना शक्ति है नहीं कि वो दूसरा शुद्ध भक्त बनाए, इसका मतलब अगर आप ये नहीं ये मानते हैं कि और कोई शुद्ध भक्त है नहीं, इसका मतलब प्रभुपाद भी शुद्ध भक्त है नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई शक्ति है नहीं कि दूसरा शुद्ध भक्त बनाए, इसका मतलब गुरु शिष्य परंपरा खत्म। तो इस प्रकार कोई भावना रखते हैं जो और गुरु शिष्य परंपरा कोई जरूरत नहीं है। अगर हर एक आइडियल क्वेश्चन आइडियल आंसर अगर हमें प्रभुपाद का बुक से मिल जाए और किसी का द्वारा हमें वो शिक्षा हम समझ सकते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत पहली जब भागवत गीता का ज्ञान दिया भगवान वहीं से समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी सारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें तद विधि प्रणिपात न, जो प्रभुपाद जी के शरण में रह के उस ज्ञान को प्राप्त किया, जैसे प्रभुपाद जी को मतलब क्या अच्छा लगता है और वो जो उनके संग किया है वही जान सकता है, तो उनके माध्यम से हम जान सकते हैं प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे गुरु को प्रसन्न करना है, और उस ज्ञान को उनके अधीनता में बहुत सावधानी से हमें वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। गर्व अहंकार में अंध होकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो और कोई भक्त के संग करने का जरूरत नहीं हमें, नहीं। यहाँ पर भी देखिए वही वरदान मांग रहा है कि हमें अनंत काल तक शुद्ध भक्त के संग में ही हरि कथा श्रवण करने का ये वरदान दीजिए आप, यही प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोई बोल लो जो ब्रह्म आदि ब्रह्म कैवल्य आदि जो मुक्ति है वो मुक्ति को भी भक्त आशा नहीं करता है। ब्रह्म कैवल्य कैवल्य मुक्ति कैवल्य नरकायते त्रिदश पुरो आकाश पुष्पायते, प्रभुदानंद सरस्वती प्रभुपाद बताते हैं जो एक शुद्ध भक्त वो इवेन जो मुक्ति शुरुआत होता है जो ब्रह्मेति से शुरुआत होता है, तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, तो जो भगवान इति जो भक्त है वही भगवान की भगवत्ता को जान सकता है। तो ब्रह्मेति क्या है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सूर्य सूर्य की जो ज्योति है उस ज्योति को सूर्य के जो रश्मि है उस रश्मि का बारे में उनको नॉलेज है, सूर्य को नहीं देख पाया उसको रश्मि को देखा, क्योंकि सूर्य लोग तक पहुँच नहीं सकते कोई हनुमान सोर के और कोई, तो सूर्य एक लोक है और सूर्य लोक से एक रश्मि आता है, हम एक आग का गोला जैसे दिखाई देता है यहाँ से, तो एक रश्मि जो रश्मि छोटा है वो हम देख सकते हैं, वो जो नॉलेज है वो है ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान उससे आगे है, जो गर्भदत्तस्थायी भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में हर जीव की अंदर में निवास करते हैं, तो ये योगी लोग इसको ध्यान लगाते हैं। आज जो ब्रह्मेति होते हैं वो भगवान के उस ब्रह्म ज्योति को जान के उसी में लीन हो जाना चाहते हैं। तो ब्रह्मेति ये है जे वो लोग यही सोचते हैं जे कोई इससे बढ़कर कुछ है नहीं, यही सब कुछ है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, और वो उसी में ही एकात्म हो जाना चाहते हैं। इसमें बताते हैं दो प्रकार का व्यक्ति इस कैवल्य को प्राप्त करता है, इस ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। दो प्रकार के मुक्ति प्राप्त करते दो प्रकार के व्यक्ति, एक है जो भगवान के विग्रह को जो सत्य नहीं मानता है, जो भगवान का विग्रह सच है, भगवान यहीं पर विराजमान है, इसको नहीं मानते वो, उस कैवल्य के मतलब उसको उपासना करके सिद्धि प्राप्त करके उसमें प्रवेश कर जाते। और दूसरा है जो निंदा करते, भगवान की निंदा करते रहते, जो भगवान के कोई स्वरूप है नहीं, मेरा हाथ है लेकिन भगवान के पास कोई हाथ नहीं है, मेरा आँख है मैं देख सकते भगवान नहीं देख सकते, इतना मूर्ख होते वो लोग, भगवान के स्वरूप नहीं मानते। वो एक ब्रह्म ज्योति है, वही से स्वरूप आता है, वही से जाके हम मिल हो जाना है, आप भी ब्रह्म है हम भी ब्रह्म है, सब समान है, कोई डुप्लीकेट है नहीं उनके लिए, कोई दूसरा रूप है नहीं, सब समान है। तो जो कैवल्य बताते हैं कृष्णेर विग्रह जयी सत्य नहीं माने, जो कृष्ण के विग्रह को सत्य नहीं मानता है, जयी निंदे युद्ध आदि करे तार सुने, और जो भगवान की निंदा करते हैं और भगवान के साथ युद्ध करते हैं, युद्ध करके जो भगवान के द्वारा उसको वो कैवल्य मुक्ति प्राप्त होता है। यही दो व्यक्ति दंड है ब्रह्मसाजुज मुक्ति, तार मुक्ति फल नहीं है जे करे भक्ति, और जो भक्ति करता है उनको ये मुक्ति नहीं, ये फल नहीं प्राप्त होता है जो भक्ति करता है। प्रभात जी इसको समझाने के लिए और अच्छा एक उदाहरण दिया कि एक गांव में एक ट्रेन आ रहा है, तो तीन व्यक्ति जाते हैं उस ट्रेन को रिसर्च करने, ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने। तो पहली व्यक्ति जो दूर से ट्रेन को देखते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, पहले कोयला का ट्रेन था तो धुआं ही धुआं निकल रहा है ऊपर से, सिर्फ धुआं। तो वो आके गांव में सबको बताते हैं जो ट्रेन कैसा है, धुआं की भांति है, एक काला सा धुआं अंधकार करके आ रहा है, वो है ट्रेन। वो पूरा उसके ऊपर एक किताब लिख दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, गांव वाले खुश हैं जो ट्रेन का असली रूप यही है। अभी दूसरा एक व्यक्ति वो ट्रेन के बारे में रिसर्च करने जाते हैं और वो देखते हैं ट्रेन अपना आंखों के सामने सीधा चला गया, तो वो देखते हैं ट्रेन एक सर्प की भांति है, एक प्रकार की लंबा कीड़ा की भांति है जो ट्रेन, उस प्रकार वो वर्णन करते। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति जाता है जो ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन के बारे में पूरा जानकारी करता है, वहाँ पर अलग अलग बगी हैं, कमरा है, अलग अलग सीट हैं, एसी है, नॉन एसी है, थर्ड एसी है, फर्स्ट एसी है, वो सब जानकारी करके उसके बारे में बताते हैं। वो इंजीनियर है, एक ड्राइवर है, और वो किस प्रकार चलता है वो बताते हैं। तो इसमें से कौन अच्छा नॉलेज ज्ञानीवान है, इसमें से जो ट्रेन के बारे में पूर्ण तरह हो जानते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो है वो थर्ड स्टेज में, मतलब सर्वोच्च स्तर में वो ज्ञानी है, जो भगवान के बारे में पूर्ण रूप से उनको ज्ञान है, जो भगवान की घर का है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नम नम, उनके घर का है, उनके पिता के नाम क्या है, उनके माता के नाम क्या है, उनके शोका के नाम क्या है, दिन में क्या करते हैं रात में क्या करते हैं, सब जानकारी होता है भक्त को, तो सर्वोच्च ज्ञानी होता है भक्त। अभी क्या करना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस भक्त की शरण में जाना चाहिए जो कि उस ज्ञान को पूर्ण तरह से जानते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, उस गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। और क्या है, गुरु की योग्यता भी है, शब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। देखिए एक गुरु को पहचानने के लिए भी कई सारे बात प्रभात जी बताएं, जो स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल हैं उस बुक में, कैसे गुरु के शरण में जाना चाहिए, कौन सी गुरु के शरण में जाना चाहिए, और किसके किस किससे हमें जिज्ञासा करना चाहिए उसका पूरा जानकारी गुरु एवं शिष्य बुक में है, डिसाइप स्पेशल मास्टर एंड डिसाइपल बुक में प्रभुपाद जी का सारे कोटेशन वहीं पर है। देखिए ब्रह्मणि उपसमाश्रम निष्णातम, निष्णातम मतलब जो उस भगवत तत्व विज्ञान को पूर्ण तरह से जानते हैं उनके शरण में जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। और जिज्ञासा कौन करता है, जो उत्तम व्यक्ति है, उत्तमम उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए। दो प्रकार के श्रेय और प्रेय, दो प्रकार के व्यक्ति हैं ये संसार में, एक प्रेय चाहते हैं और एक श्रेय चाहते हैं। जो श्रेय चाहते हैं उनको गुरु के शरण में जाना चाहिए। और प्रेय, प्रेय क्या है कि मान लीजिए एक बच्चा है वो अभी खेलना चाहता है, खेलकूद करना चाहता है, वो प्रेय है। लेकिन श्रेय क्या है, जो गो टू स्कूल गेट एजुकेशन, दैट इज श्रेय, वो श्रेय है। लेकिन क्या करते हैं हम, इमीडिएट जो सुख है मनुष्य, आहार निद्रा भय मौत नाम, ये जो इमीडिएट सुख इसका प्राप्त करना चाहते हैं। भालो ना खाइबे भालो ना पड़ीबे, खाना तो है शरीर को देखना है, इसका मतलब नहीं प्लेटेबल डिशेस हर दिन 365 दिन में हमें 250 दिन फिस्ट हो जाए, अच्छा अच्छा मसला खाए जिब्बा के संतुष्ट के लिए। और जिब्बा लालसाए जे इति उति धाय कृष्ण उदार परायण कृष्ण नहीं पाए, हमें शरीर धारण करने के लिए खाना चाहिए। इसका मतलब नहीं प्लेटेबल डिशेस हर दिन खाना चाहिए। आज जो भी इसका विरोध करता है वो तो अच्छा ही करता है, जो प्लेटेबल डिशेस नहीं खाना चाहिए अच्छा ही करता है, हमारा हित के लिए करता है। भालो ना खाइबे भालो ना पड़ीबे, तो प्रेय, प्रेय मतलब हम इमीडिएटली कुछ अच्छा इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। लेकिन श्रेय है वो जो हमें ये पाप वर्गो से उभर के अपो वर्ग के अंदर प्रवेश कराते हैं। इसलिए हमें उस गुरु जो ब्रह्मणी निष्णातम, जो भगवत तत्व विज्ञान में पूर्ण तरह निष्णातम, निष्णातम मतलब जो डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है, राजविद्या राजगुज्जम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुषुकुम उत्तम अभ्यम, जो प्रत्यक्ष अवगमन किया है उस भक्त के शरण में जाके हमें क्या करना है, उनकी आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और उस भक्त की अगर मान लीजिए कोई है बहुत अच्छा से प्रवचन कर रहा है, शास्त्रों को अच्छा से वो बता रहा है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि वो ब्रह्म में पूर्ण तरह से वो निष्णात तो है, वही क्वालिफिकेशन में हम उनके शरण में जा सकते हैं? नहीं, वो क्वालिफिकेशन भी पर्याप्त नहीं है। उपशम आश्रय होना चाहिए, हम जो ज्ञानी है उनको तो देख सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, लेकिन और एक गुण है जो कि काम क्रोध लोह मोह मद माश्चर्य, ये सारे जो वेग है उसको दमन के उपशम किया है, उस गुरु के शरण में जाना चाहिए, जाके हमें ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। हम देखते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जिसके शरण में हैं, कुछ साल पहले भी हुआ, यह पंजाब विभाग में हुआ, जिसके शरण में हैं उससे हम इस ज्ञान प्राप्त करते हैं, काल अगर उसको कुछ हो जाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है, वो सारे भक्तों पर बाबा जी बन जाता है, हिल जाता है पूरा। इसलिए हमें ऐसा नहीं जे उसके शरण में ही जाना, हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रचारक है उनका धर्म है कि वैसा एक गुरु से कनेक्ट करा दे, वैसे एक भक्त से परम भगवान के महान भक्तों से उनकी कनेक्ट करा दें और उनके साथ उनका कनेक्ट कराने के बाद उनका दायित्व खत्म, उनका ऊपर और वो उनको डाइवर्ट, फिर भी डाइवर्ट कर देते हैं। क्योंकि आजकल का वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बताते हैं जो दो प्रकार के प्रचारक है इस संसार में, एक है लालू और एक है कालू। आप जानते हैं लालू कालू का स्टोरी। लालू होता है एक राजा के, एक जमींदार राजा के दो लड़का है, एक लालू है और एक कालू है। वो किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, किसी से भी कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। तो जमींदार ने अनाउंसमेंट कर दिया जो हमारा लड़का, दोनों लड़का को अगर कोई मैथमेटिक्स सिर्फ 100 तक सिखा सकते तो उनको हम एक गाँव दे देंगे। तो एक गरीब टीचर वो आते हैं, आके कुछ कंडीशन रखते जो अगर आपका आपका शिष्य, आपका ये दो स्टूडेंट, दो बच्चा अगर मेरा साथ में स्टूडेंट बन के हमेशा रहे दिन रात तो हम मैथमेटिक्स सिखा सकते। तो वो कंडीशन राजा ने स्वीकार कर लिया और उस बच्चा को दे दिया। एक दिन बच्चा को लेके वो टीचर घूमने गया और टीचर ने बोल रहा है देखो तो ये गौ माता सो रहा है, इनके कितना पेड़ है गिनो। तो कालू गिनने जाता है 1 2 3, लालू तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है, अरे मत गिन वो मैथमेटिक्स सीखर है। तो ये है जो लालू है, लालू नहीं चाहता है जब कालू का बात, कालू टीचर का बात में आ जाए तो कल हमारा बात नहीं मानेगा, कल हमारा पॉकेट भारी नहीं होगा। तो इस प्रकार लालू जैसा प्रचारक अगर बन जाए संसार में तो इसको उनका हित साधन नहीं होगा। धृतराष्ट्र भी हमेशा डरते थे, धृतराष्ट्र बहुत डरते थे जी हमारा ये पुत्र सपुत्र दुर्योधन कृष्ण बहुत ही कानिंग है, बहुत ही चतुर है, अगर ये कृष्ण की बातों में आ जाए तो काल तो हमारा पुत्र युधिष्ठिर महाराज का सेवक बन जाएगा, फिर राजा कैसे बनेगा। तो धृतराष्ट्र को हमेशा भय है। तो लालू जैसा भक्तों को हमेशा भय है जिसको अंदर में बहुत सारे वासना है, पोस्ट पोजीशन प्रणाम और दक्षिणा की डर है, ये नहीं मिलेगा तो वो अच्छा प्रचारक नहीं है, जेन्युइन प्रचारक नहीं है। इसलिए शरण में उसी के जाना है। हम अच्छा बुरा को देख सकते हैं, अच्छा बुरा को हम देख सकते हैं, शायद इस वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहिए नेट में। हम अच्छा बुरा को अच्छा से समझ सकते हैं जो क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन शुरू में जो भक्ति में ये उपशम आश्रय वो तो नहीं देखते, अच्छा पंडित तो देख के हम उसके शरण में चला जाते हैं जो जो बहुत ही कि वो क्या सेंटिमेंटलिस्ट होता है शुरू में। तभी वो MTech हो और BTech हो और वो जितना भी टेक किया हो भौतिक संसार के, लेकिन आध्यात्मिक में आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में आते ही वो सेंटिमेंटलिस्ट हो जाता है, भावुक हो जाता है। तो भावुक होने के नाते उसको अच्छा से गाइडलाइन, उस भावुकता भक्ति के लिए बहुत ही फायदाकारी है, लेकिन उसको अच्छा से गाइडलाइन मिल जाए। और लालू जैसा प्रचारक ना पाए, वो अच्छा प्रचारक के हाथ में पड़े तो वो अच्छा भक्त बन सकता है, काल वो इस्कॉन के लिए बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, भगवान के लिए कर सकता है, मतलब पूरा संसार को वो अच्छा शुद्ध भक्त दे सकता है बना के भी। तो जेन्युइन प्रचारक हमें बनना है और इस प्रकार इस कृष्ण भक्ति को आगे फैलाना है। और कौवा का समाज नहीं क्रिएट करना, हंस की समाज क्रिएट करना है। और इस कृष्ण भावनामृत का पूरा उद्देश्य वही है कि हंस समाज क्रिएट करे, और ये हर भक्त की दायित्व है। जय गुणतरा श्रीमद् भागवतम की जय।